हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 363। मनस्वी सोच रही थी कि अनय को विराट से मिलाने में उसका कोई नुकसान नहीं है। इससे ये भी साबित होगा कि उसे अनय पर पूरा भरोसा है, इसीलिए वो मन ही मन खुश थी। वहीं दूसरी तरफ अनय सोच रहा था कि क्या सच में मनस्वी उसे विराज के पास ले जा रही है, और वो इतनी आसानी से उसकी बात कैसे मान गई। उसने उसे कहाँ रखा होगा? क्या सच में वो उस पर भरोसा करती है जो उसे प्रूफ करने के लिए उसकी ये बात भी मान रही है? अपने अपने मन में ये बातें सोचते हुए वे दोनों चुपचाप कार में बैठे थे। कार में एक अजीब सा सन्नाटा था। अपने मन में कुछ सोचते हुए अनय अचानक बोला, अच्छा ठीक है, तुम मुझे विराज के पास ले जा रही हो, लेकिन ये बताओ कि आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? तुम उसे वापस आदित्य के हवाले करोगी या फिर नहीं? विराज के इस सवाल पर मनस्वी चौंक गई। उसने उसकी तरफ देखा और बोली, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो अनय तुम, मुझे तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। मनस्वी बहुत ही निराश होकर उसकी तरफ एक नज़र देखी और इतना ही बोली, बाकी वो ड्राइव करते हुए सामने की तरफ देखने लगी। उसकी बात पर अनय सफाई देते हुए बोला, क्या पागलों जैसी बातें, ऐसा भी भला क्या बोला मैंने, मैं बस एक सवाल ही तो कर रहा हूं, मन में आया तो पूछ लिया। उसकी इस बात पर मनस्वी ने एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए बेबसी से अपना सिर हिलाया और बोली, अनय तुम सच में जैसे लोग प्यार में अंधे होते हैं, मुझे लगता है तुम उस आदित्य की दोस्ती में अंधे हो चुके हो। तुम्हें सही और गलत में बिल्कुल भी फर्क नज़र नहीं आ रहा है। और क्यों मैं विराज को उसके हवाले करूं? ताकि वो उसे किसी साइको की तरह टॉर्चर करे, बांध कर रखे, और क्या पता वो उसकी जान भी ले ले। नहीं अनय, हाँ माना कि विराज ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अगर उसे सुधारने के लिए कोई उससे भी बड़ी गलती करे तो फिर वो कहाँ से सही होता है, ये बताओ तुम मुझे। मनस्वी का सवाल बिल्कुल सही था। इसकी वजह से अनय की बोलती बंद हो गई। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी नहीं चाहता कि आदित्य कुछ भी गलत करे, लेकिन फिर भी तुम अगर विराज को बचाओगी तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, और वो दोबारा ऐसा कोई काम करने से पहले बिल्कुल भी नहीं डरेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि तुम और उसके घर वाले मिलकर उसे हमेशा ही बचा लेंगे। मनस्वी ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, नहीं मैं उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूं अनय, सिर्फ उसकी माँ के कहने पर ही मैंने उसकी जान बचाई है, और अब से उसका मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रह गया है, क्योंकि उसने जो कुछ भी सुनैना के साथ किया वो बिल्कुल गलत है मेरी नज़र में भी, और मैं ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। अनय ने ताना मारते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इतनी बात बोलने से वो समझ जाएगा और सुधर जाएगा? मनस्वी ने जवाब दिया, अब देखो समझे या ना समझे, सुधरे या फिर बिगड़े, मैं उसकी इतनी तो गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन हाँ मैं उसे आदित्य और सुनैना की जिंदगी से दूर रखने का वादा कर सकती हूँ कि आगे से उसकी वजह से आदित्य और सुनैना की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये बात सुनकर अनय को अच्छा लगा, लेकिन साथ ही उसे थोड़ी हैरानी भी हुई। उसने हैरान होते हुए सवाल किया, लेकिन ये बताओ आदित्य को प्रोटेक्ट करने की कोई खास वजह, उसके लिए इतना क्यों कर रही हो तुम, जबकि वो तो तुम्हारा बिजनेस राइवल है ना, और जहां तक मैं जानता हूं तुम उसे कुछ खास पसंद भी नहीं करती, तो फिर? अनय का ये सवाल सुनकर भी मनस्वी ने उसकी तरफ नहीं देखा, उसी तरह सामने देखती हुई ड्राइव करते हुए बोली, अनय देखो पसंद और नापसंद एक अलग बात है, लेकिन अगर अब विराज इसमें इन्वॉल्व है तो फिर कहीं ना कहीं पहले तो मैंने उसे सपोर्ट किया था, मुझे इस बारे में नहीं पता था तब, इसीलिए एक तरह से समझ लो कि मैं बस अपनी गलती सुधार रही हूँ और अनजाने में किए अपने पाप का प्रायश्चित कर रही हूँ और कुछ भी नहीं, या फिर तुम ये समझ लो कि सब कुछ मैं इस वजह से कर रही हूँ कि शायद मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो। उसकी ये बात अनय को समझ आ गई। उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर इसके बारे में सोचने लगा, कुछ भी नहीं बोला। अनय को चुप देखकर मनस्वी ने कहा, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए ना, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए या फिर नहीं, कुछ और बचा हो तो पूछ लेना वो भी। मनस्वी की इस बात पर अनय ने कहा, सवाल तो अभी काफी सारे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए बस ये बता दो कहाँ पर ले जा रही हो, जबकि ये रास्ता तो हमारे घर का है, हम पहले घर जा रहे हैं क्या? अनय के इस सवाल पर मनस्वी ने उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। अनय उसकी इस मुस्कुराहट का मतलब नहीं समझ पाया, इसीलिए वो थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोला, लेकिन हम तो विराज के पास जा रहे थे ना। इस पर मनस्वी ने बड़े ही आराम से कहा, हाँ वही जा रहे हैं। इसका मतलब विराज हमारे घर पर है, अनय बहुत ही हैरानी से बोला। मनस्वी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्के से हाँ में अपना सिर हिलाया। अनय को पूरा मामला समझ आ गया। उसने अपना मोबाइल फोन निकालकर एक मैसेज टाइप किया और आदित्य को भेज दिया। मनस्वी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अनय काफी देर से ही मोबाइल अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ आदित्य का घर। स्वीटी आज कितने दिनों के बाद फिर से अपनी डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट गई थी। फिलहाल घर पर आदित्य और सुनैना अकेले थे। अभी वे दोनों अपने रूम में थे। सुनैना ने अभी अभी अपना लंच फिनिश किया था, तब से आदित्य दवाइयां खाने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। सुनैना को वैसे तो दवाइयां खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन वो आदित्य की अटेंशन पाने के लिए जानबूझकर नाटक कर रही थी। सामने रखी दवाइयां देखकर सुनैना मुंह बनाते हुए बोली, और ये दवाइयां कब तक खानी होंगी आदि? मैंने कहा ना अब मैं ठीक हो गई हूं, तो फिर क्यों ये सब? तुम्हें पता है मैं दवाइयां खाने से ना और भी ज्यादा बीमार पड़ जाती हूं। सुनैना को इस तरह मुंह बनाते देख आदित्य ने थोड़ा सा सीरियस फेस बनाते हुए उसे समझाया और कहा, देखो सोना, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अभी ठीक नहीं हो। डॉक्टर ने बोला है कि सिर्फ ऊपरी नहीं, तुम्हें इंटरनल भी काफी चोट आई है, तो पूरी तरह से रिकवर होने के लिए टाइम पर मेडिसिन लो। इसमें मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। इतना बोलते हुए आदित्य ने सख्त नजरों से उसकी तरफ देखते हुए जबरदस्ती उसके हाथ में दवाइयां थमा दी। आदित्य का ऐसा स्ट्रिक्ट रूप देखकर सुनैना ने भी आखिर बिना कुछ बोले वो मेडिसिन खा ली। फिर पानी पीने के बाद बोली, आदि वैसे सच कहूं तो मेडिसिन से ज्यादा पता है मुझे ठीक होने के लिए किस चीज की जरूरत है। सुनैना की ये बात सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, किस चीज की बताओ? तो सुनैना ने बहुत ही मासूमियत से उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी जरूरत है मुझे आदि। उसकी ये बात इस तरह से बोलने पर आदित्य के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो अपनी बाहें फैलाते हुए बोला, तो फिर आ जाओ ना मेरे पास, मैं तो यहीं हूं हमेशा। और इतना बोलते हुए आदित्य ने सुनैना को अपनी बाहों में भर लिया। सुनैना भी उसके करीब आती हुई उसके चेस्ट पर अपना सिर रखते हुए उसके गले लग गई। सुनैना के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अपनी बाहें आदित्य की कमर में डालते हुए उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी चेस्ट पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर ली। ऐसा करते हुए उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। पता नहीं कितने दिनों के बाद वे दोनों इस तरह एक दूसरे के गले लगे थे, क्योंकि हॉस्पिटल और बाकी सारी चीजों में उन दोनों को टाइम नहीं मिला था। हॉस्पिटल में भी आदित्य उसके साथ होता था, लेकिन घर पर इस तरह दोनों के पहले की तरह अकेले और साथ होने की बात ही अलग है। ये सुनैना को अंदर से सुकून दे रहा था।
सुनैना आदित्य के गले लगी हुई थी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए हल्के से उसके माथे पर किस किया और पिछली बातें सोचते हुए बोला, सोना तुम ठीक हो ना? वैसे तुम्हें याद है ना, तुम्हारे फाइनल एग्जाम भी हैं कुछ ही दिनों में। उसके लिए तुम प्रेपरेशन कर पाओगी या फिर इस साल रहने दे? आदित्य ने एकदम से सुनैना को इस बारे में याद दिलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सुनैना चौंक गई। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, ओ माय गॉड, डेट क्या है आज की? आदित्य ने उसे बताया, 7 जुलाई है। ये सुनकर सुनैना अपने मुंह पर हाथ रखती हुई बोली, ओ माय गॉड, ये फाइनल सेमेस्टर तो जुलाई में ही होता है और मैंने तो कुछ भी प्रेपरेशन नहीं की है। मैं कैसे सब कुछ कैसे एग्जाम दूंगी इस साल? और रही बात स्किप की, तो वो तो मैं कभी नहीं करने वाली। सुनैना ये सब कुछ बोलते हुए थोड़ी हड़बड़ा गई थी, लेकिन आखिरी बात उसने काफी ज्यादा मजबूती से बोली थी। एग्जाम देने को लेकर उसका मजबूत इरादा देख आदित्य ने कहा, तुम्हें याद भी नहीं था एग्जाम के बारे में, तो तुम एग्जाम दोगी कैसे? और वो तो बस अभी मेरे मन में आया तो मैंने तुम्हें याद दिला दिया। सुनैना ने आदित्य से थोड़ा दूर होते हुए जल्दी से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच बेबी, बहुत अच्छा किया जो याद दिला दिया, थैंक्स टू यू। और आज से पढ़ूंगी तो मेरी प्रेपरेशन हो जाएगी, वैसे भी सारा कोर्स कम्प्लीट ही है मेरा ज्यादातर। उसे एग्जाम के लिए एक्साइटेड देखकर आदित्य ने कहा, वाओ, मतलब इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले तक तो तुम्हें एग्जाम के बारे में कुछ याद भी नहीं था और अभी मैंने याद दिलाया तो तुरंत ही सब कुछ सोच भी लिया। लेकिन ये बताओ कैसे दोगी एग्जाम? तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। और कोई बात नहीं, मैं कॉलेज में बात कर लूंगा और तुम्हारी कंडीशन उन्हें एक्सप्लेन। आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सुनैना ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं ये साल गैप नहीं करूंगी, मैं एग्जाम दूंगी और मैं प्रेपरेशन कर लूंगी, मेरी तबीयत ठीक है अब, सुनैना ने थोड़ी जिद भरी आवाज में कहा। तो फिर आदित्य ने भी ज्यादा जोर देकर उसे मना नहीं किया, क्योंकि वो उसे प्रेशर नहीं देना चाहता था, हर चीज में बस उसका साथ देना चाहता था। वे दोनों अभी तक एक दूसरे के करीब ही बैठे हुए थे, लेकिन ये बात खत्म होते ही वे एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हुए। आदित्य अभी भी सुनैना के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। उसने सुनैना के हाथों को अपने हाथों में थाम रखा हुआ था और बोला, ठीक है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस मत लेना पढ़ाई और एग्जाम को लेकर भी,
डॉक्टर ने मना किया है, और अगर जरा सा भी सिर में दर्द हो या और भी कोई कॉम्प्लिकेशन तो तुरंत मुझे बताना और इग्नोर मत करना, छोटी सी प्रॉब्लम भी बाद में बड़ी बन सकती है। क्रमशः